समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आकाशवाणी गोल्ड का कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं, रोजाना की तरह आज भी हम तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर आ गए हैं आपके पास। इसके अलावा इतिहास की भी होगी बात और जानेंगे कि आज का दिन क्यों खास है। साथ ही कार्यक्रम में आज कुछ खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं रेनू कटारिया। गुड मॉर्निंग रेनू।
Good morning, Sir Firozi, and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network on this beautiful wintry morning. तो जैसा कि सर फिरोजी बता ही चुकी हैं, हमारे पास बहुत कुछ है अपने लिसनर्स के लिए आज, विच इज द 23rd of December। तो उससे पहले क्यों ना हम शुरू करें आज की न्यूज हेडलाइंस।
बिल्कुल।
India will gain zero duty access of 100% goods exports to New Zealand after the successful conclusion of landmark free trade agreement negotiations FTA between the two countries. The FTA enhances market access and tariff preferences for Indian exports to New Zealand while serving as a gateway to the wider Oceania and Pacific Island markets. The free trade agreement will significantly strengthen the investment partnership between the two countries. As part of the agreement, New Zealand has committed to facilitate investments of $20 billion into India over the next 15 years. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the FTA will build various opportunities for the farmers, entrepreneurs, students, women and the innovators by building trade. He added that the agreement in a big way will help trade, tourism, trade, research and development, education, innovation and the services sector, especially benefiting the farmers and dairy persons in upgrading quality, productivity and generating higher incomes. The minister highlighted that this mutually beneficial agreement will further strengthen the India-New Zealand economic partnership and advance India's journey towards the journey of becoming a developed nation.
It's our third FTA with a Five Eyes nation, Australia, UK and now New Zealand. We are soon going to launch discussions for the terms of reference with Canada also. And we are already at an advanced stage in our discussions with the USA. This reflects the growing strategic importance of India in world geopolitics.
इस वर्ष नवंबर महीने में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 1.8% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि सीमेंट, इस्पात, उर्वरक और कोयले के उत्पादन में नवंबर महीने में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष नवंबर महीने में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में कोयला उत्पादन में 2.1%, उर्वरक उत्पादन में 5.6%, सीमेंट उत्पादन में 14.5% और इस्पात उत्पादन में 6.1% की वृद्धि हुई है। नवंबर महीने में कच्चे तेल के उत्पादन में 3.2% और प्राकृतिक गैस उत्पादन में 2.5% की गिरावट आई है। देश में इस वर्ष अब तक 580 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसल बोई गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8 लाख हेक्टेयर अधिक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस महीने की 19 तारीख तक रबी फसलों के अंतर्गत की गई बुआई की प्रगति की रिपोर्ट जारी की है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष गेहूं की बुआई 301 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर हुई है। उन्होंने आगे बताया कि 126 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती हुई, जबकि धान की रुपाई में 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की वृद्धि देखी गई।
यूनियन एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज एम्फसाइज्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इन अरावली रेंज मैटर रिकॉग्नाइजेस एंड एंडोर्सेस द गवर्नमेंट सस्टेन्ड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द रेंज थ्रू अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। The minister stated this while addressing a press conference in New Delhi yesterday. More from our correspondent.
Environment Minister Bhupendra Yadav said no new mining leases will be issued until a detailed management plan for sustainable mining, MPSM, is prepared by the Indian Council for Forestry Research and Education. The council will identify permissible and prohibited zones, assess ecological carrying capacity, and mandate post-mining restoration and rehabilitation measures for the entire Aravallis.
Mining activity 0.19%.
Mining activity covers 0.19%. Mining will be possible only in areas less than 1%, and even there, no mining has been opened. It has also been stated that a scientific management plan should be prepared for this. Furthermore, if any new approval is granted, then prior permission from ICFRE must be obtained. Thus, the process has been made strict.
So, ye process ko strict kya?
Regarding the definition of Aravalli Hills as any landform rising 100 meters or above, the minister said that such definition is only subjected to mining. Mr. Yadav further emphasized the protection of 4 tiger reserves and 20 wildlife sanctuaries in the areas, stating that the government is balancing ecology and economy together. Adarsh, Akashvani News, Delhi.
The government has debunked a misleading claim circulating on social media that suggested the Income Tax Department would gain sweeping powers to access citizens' social media accounts, emails, and other digital platforms from April 1st next year. The claim was shared by a post from a social media handle raising concerns about privacy and surveillance. According to PIB Fast Fact Check, the claim is misleading, and the PIB stated that the provisions under Section 247 of the Income Tax Act 2025 are strictly limited to search and survey operations. It added that these powers can only be exercised when a taxpayer is subject to a formal search operation backed by evidence of significant tax evasion. Moving on to some international news for Sir Firozi.
Ji.
UN Secretary General Antonio Guterres has expressed deep concern over rising violence in Bangladesh, stressing that all minorities must feel safe. The UN said it was alarmed by recent attacks, including the lynching of Hindus, and emphasized that people who do not belong to the majority must be protected. Mr. Guterres showed his confidence in the government led by Mohammed Yunus, which would work to keep every single Bangladeshi safe. Violence has intensified following political unrest after the ouster of former Prime Minister Sheikh Hasina in August last year, and a recent outbreak of violence has roused concern. The killing of youth leader Sharif Osman Hadi, who had been the spokesperson for the Inqilab Mancha, fueled tensions further earlier this month.
Aur Renu, ab rukh kar lete hain khel ki aur.
Ji.
महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज विशाखापट्टनम के डॉ. Y.S. राजशेखर रेड्डी ACAVDCA स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पिछले रविवार को विशाखापट्टनम में खेले गए पहले T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। और कार्यक्रम में रेनू, अब समय है कि अपने श्रोताओं को महानगरों का भी हाल देते चलें, तो आपसे शुरुआत करते हैं।
चलिए हम चेन्नई चलते हैं। पहले
बिल्कुल,
ISRO's prestigious commercial mission named the LVM3M6, also called as Bluebird Block 2 mission, is all set to be launched tomorrow morning at Char Center in Sriharikota. This mission marks the 6th operational flight of LVM3. In this mission, the LVM3M6 will place the Bluebird Block 2 satellite, the communication satellite of AST Space Mobile, USA, into the low Earth orbit and is the largest commercial communication satellite to be deployed in low Earth orbit. It will also be the heaviest payload to be launched by LVM3 from Indian soil. The satellite is part of a next generation of Bluebird Block 2 communication satellites designed to provide space-based circular broadband connectivity directly to standard mobile smartphones. In its earlier missions, LVM3 successfully launched a Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, and the 2 OneWeb missions carrying 72 satellites. The previous launch of LVM3 was the LVM3M5 or CMS-03 mission that was successfully accomplished on November 2nd, 2025. And there is one more news that I have from Chennai, Sir Firozi, before we move on to Delhi.
Ji.
The 49th edition of the Chennai Book Fair 2026 will be inaugurated on January 8, 2026 with other over 1,000 stalls will be set up by various countries including Malaysia, Japan, Sri Lanka and Singapore. Other states such as Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka will also set up stalls. Booksellers and Publishers Association of South India President R.S. Shanmugam said that the book fair will be held at the YMCA grounds Nandanam. The association is taking steps to make entry free for the book fair apart from improving amenities such as toilets, parking and rest area for the public. The book fair will be open from 11 a.m. till 8:30 p.m. on all 14 days, unlike the last few years where the fair was open in the mornings only on weekends.
And Renu ab rukh kar rahe hain Rajdhani Delhi की ओर.
जी,
दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली वासियों के लिए 31 जनवरी तक लंबित बिलों पर लगने वाले 100% विलंब शुल्क को माफ कर दिया है. जल बोर्ड के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त जुर्माना नहीं लिया जाएगा. वहीं बोर्ड ने ऑफलाइन भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को नजदीकी जोनल कार्यालय में जाकर नकद कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने को कहा है. ऑनलाइन भुगतान के लिए जल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध है. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कल अटल कैंटीनों के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि इन कैंटीनों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया जा रहा है. इस बीच दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रिंग रोड स्थित सद्भावना पार्क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सद्भावना पार्क रखने की मांग की है. श्री खंडेलवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर पार्क परिसर में दिवंगत प्रधानमंत्री वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव भी दिया है. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और सुशासन के प्रतीक थे. और रेनु, हमारे दूसरे महानगर से आपके पास क्या जानकारी है?
मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो, सर फिरोजी.
जी,
द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन बेंगलुरु विल एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू हार्नेस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन द हेल्थ साइंसेज सेक्टर. इट हैज अनाउंस्ड यस्टरडे दैट अ लेटर ऑफ इंटेंट विल बी साइंड विद क्रिस्पर बिट्स प्राइवेट लिमिटेड टू फॉर्म अ लैंडमार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन of scientific discoveries in a laboratory into real-world clinical applications. To be named as Center of Excellence for CRISPR Innovation and Translation of COE-CIET, in short, this will combine the Center for Advanced Scientific Research's strength in fundamental biomedical sciences with CRISPR expertise in applied gene editing and translational platforms. This will be a replicable national model for academic industry partnerships to strengthen India's biotechnology and innovative ecosystem. चलते हैं आपके पास दूसरी मेट्रो की न्यूज के लिए.
जी बिल्कुल रेनू, टाइम है मुंबई की बात करने का.
जी,
22वां थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव मुंबई और ठाणे में 9 से 15 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा. महोत्सव के लिए कुल 56 फिल्मों का चयन किया गया है जिनका प्रदर्शन प्रभा देवी स्थित पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी और ठाणे के लेक शोर मॉल स्थित सिनेपोलिस थिएटर में किया जाएगा. मुंबई में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एशियन फिल्म फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री किरण वी शांताराम ने बताया कि इंडोनेशियाई फिल्म ऑन योर लैप ओपनिंग फिल्म होगी जबकि फोकस कंट्री किर्गिस्तान होगा. डॉ वी शांताराम की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में दो आंखें 12 हाथ, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, कुंकू और नवरंग जैसी फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी. बृहन मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई निर्माण स्थलों पर निगरानी में कमी को गंभीरता से लेते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दोनों एजेंसियों के प्रमुखों को अपने अधिकारियों की निष्क्रियता के बारे में व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने 4-सदस्य समिति द्वारा प्रस्तुत 74 पेजों की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जिसमें कई निर्माण परियोजनाओं में वायु प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के व्यापक उल्लंघन का विस्तृत विवरण दिया गया था. और रेनु आपके पास हैदराबाद से जुड़ी क्या जानकारी
है? Yes, of course, I will go to Hyderabad Metro before you go on to Kolkata, Sir Firozi. In Telangana, the sarpanches and ward members elected in the recently held Gram Panchayat elections in the state have assumed office yesterday. Out of 12,728 Gram Panchayats, 11,497 sarpanches were elected by contest in three phases and 1,205 were elected unanimously, while a few more panchayats either did not get nominations or elections were stayed. In addition, 85,955 ward members were elected through ballot, while over 25,000 members elected unanimously. Congratulating the elected representative, State Panchayat Raj and Rural Development Minister D. Anusuya Sitakka suggested them to be leaders who understand people's issues and work towards their resolution. So, कोलकाता चले?
बिल्कुल रेनु, भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या की निंदा करते हुए कल कोलकाता में एक मार्च का आयोजन किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और साधु संत समाज के सदस्यों ने भाग लिया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या उसी तरह की गई जैसे मुर्शिदाबाद के हरगोविंद दास और चंदन दास की हुई थी। और रेनु, अब वक्त है कि अपने श्रोताओं को महानगरों के मौसम की भी जानकारी हम देते चलें।
बिल्कुल, तो बताइए दिल्ली में कैसा मौसम है आज?
जी बिल्कुल, राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा, न्यूनतम तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच मुंबई में भी धुंध छाई रहेगी, न्यूनतम तापमान के 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में सुबह कोहरा और धुंध रहेगी, न्यूनतम तापमान के 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और रेनु, आपकी ओर से भी जान लेते हैं महानगरों के मौसम का हाल।
सिमिलर सिचुएशन है बाकी थ्री मेट्रोज में भी, सर फिरोजी, फॉग और मिस्ट ही दिखा रहा है वहां भी। सो चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्री। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ड, द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 26 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ड इन अर्ली मॉर्निंग, द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 13 डिग्रीज एंड मैक्सिमम ऑफ 29 डिग्री सेल्सियस।
और श्रोताओं, अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की और आपको बताने की आज यानी 23 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों दर्ज हो गया।
जी
तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे।
श्रोताओं, हमने आपको अभी जो गीत सुनाया ये 1959 की फिल्म हीरे मोती से है। इसका नाम है नाच रे धरती के प्यारे और ये गीत आप तक लाने का कारण था आपको ऐसे दिन की याद दिलाना जो किसानों के अमूल्य योगदान का जश्न मनाता है। जी श्रोताओं, आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस राष्ट्र की प्रगति में किसानों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। किसान दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देश की कृषि विरासत के संरक्षण में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। किसानों की भूमिका को महत्व देते हुए सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनेक पहल की हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को वित्तीय सुरक्षा, जोखिम कम करने के उपाय और दीर्घावधि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
वेरी ट्रू सर फिरोजी। From the first rays of sunlight to late hours in the field, our farmers work tirelessly so that every household has food on its plate. Agriculture sustains over half of India's population and remains the foundation of our rural economy. It contributes significantly to national income, employment, food security and export earnings. And today, we salute the backbone of India, our farmers, as we observe National Farmers Day today. Farmers play a crucial role in economic stability. A strong agricultural sector ensures price stability, supports allied industries like food processing, textiles, transport and trade and drives rural development. While agriculture grows, the nation moves forward. Beyond economics, farming is deeply woven into India's culture and civilization. Our festivals, traditions, and community life revolve around agricultural cycles, from sowing to harvest. Farmers preserve indigenous knowledge, protect biodiversity, and act as custodians of the land for future generations. Let us express our gratitude to the hands that feed the nation and build its future. Every grain of rice, every loaf of bread, every drop of milk tells a story of hard work, patience, and resilience. Jai Jawan, Jai Kisan Ji. So, chalte hain baki ke hamare days ke 23rd December ke baare mein baki years mein ki aaj kya kya history mein hua tha. So, let me begin with the year 1672. On this day, Giovanni Cassini discovered Rhea, Saturn's second largest moon.
1894 में आज ही के दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में पूस मेले का उद्घाटन किया.
In the year 1954 on this day, the first successful kidney transplant between the two survivors took place in Boston.
और वक्त में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं रेनु. 1914 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंची.
John Bardeen, Walter H. Brittain and William Shockley invented the first working transistor, a point contact type, in New Jersey on December 23, 1947, a device that amplified electrical signals and became the foundation of modern electronics, earning them the 1956 Nobel Prize in Physics.
और 1968 में आज ही के दिन मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का सफल प्रक्षेपण किया गया
जी.
और रेनु, अब रुख कर लेते हैं उन खास हस्तियों की ओर जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्म दिवस है.
यस.
आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के बेहतरीन फिल्मकार श्याम बेनेगल जी को. भारतीय फिल्म इतिहास में श्याम बेनेगल ऐसे फिल्मकार हुए जिन्होंने मनोरंजन के साथ साथ दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर किया. उनकी फिल्मों में ना शोर था ना दिखावा, लेकिन हर कहानी के पीछे गहरी सोच थी. लेकिन रेनू, श्याम बेनेगल को फिल्में बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये भी उनके मुंह से ही सुन लेते
जी, बिल्कुल.
गुलत वाज इन टू फिल्म्स इन दोस डेज. हिज करियर वाज एन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन. I would sort of very keenly listen to what he was doing whenever there was talk about Gulat. And when he did come on holidays and things like that, my curiosity knew no end, you know. So that was how I think I was fired by this idea of wanting to become a filmmaker.
वेरी ट्रू सर फिरोजी. देखिए, हम सबको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. और श्याम बेनेगल ने अगर अपने आप से कहा है कि उन्हें गुरुदत्त से इंस्पिरेशन मिली है, तो ये तो सोने पे सुहागा था. दैट बोथ श्याम बेनेगल एंड गुरुदत्त की अगर एक सोच हो जाए तो कितनी प्यारी मूवीज हमें देखने को मिली थी. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट श्याम बेनेगल, ऑफन रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ पैरेलल सिनेमा, ही इज वाइडली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स पोस्ट 1970s. अगर हम उनके अवार्ड्स की बात करें, सो ही हैज 18 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, अ फिल्म फेयर अवार्ड एंड अ नंदी अवार्ड. एंड इन 2005 ही वाज ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा. And he was also honored by the government of India with Padma Shri, the fourth highest civilian honor, in 1991 with the Padma Bhushan, the third highest civilian honor. Aur ye isliye bhi mila hoga inhe kyunki inhone itni achhi movies banayi thi. So unme se hum ek do movies ke yahan pe baat karenge. Let's talk about the movie Manthan, which means the churning, jo ki banayi thi inhone in the year 1976. Which is a film on rural empowerment and is set against the backdrop of Gujarat's fledgling dairy industry. For the first time, over 5 lakh rural farmers in Gujarat contributed 2 rupees each and thus became the film's producers. Upon its release, truckloads of farmers came to see their film, making it a success at the box office, and making it a success at the box office, highly successful movie. So, yahin par hi isi movie ka pehle ek gana sun lete hain aur fir एक नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं. और अगर हम उनकी एक और मूवी जुनून, जिसका मतलब होता है द ऑब्सेशन, की बात करें, इन द ईयर 1978, इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय शशि कपूर, इज अ लॉस्ट जेम दैट डिजर्व्स मोर अटेंशन दैट इट हैज रिसीव्ड ओवर द लास्ट थ्री डेकेड्स, बेस्ड ऑन अ नोवेला नेम्ड अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स बाय द वन एंड ओनली रस्किन बॉन्ड. जुनून प्रेजेंट्स द हॉन्टिंग टेल ऑफ लव, ऑब्सेशन एंड डेथ सेट अराउंड द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857. सो जुनून मूवी का भी एक प्यारा सा गाना सुनते हैं.
राज़े हकीकत, राज़े हकीकत क्या कहिए.
And Benegal was backed by star Shashi Kapoor, for whom he made Junoon and Kalyug. The former was a love story, जैसे कि हमने बताया है कि वो Indian Mutiny of 1857 के बारे में बनी हुई थी. While the latter was based on the Mahabharat and was not a big hit, although both won Filmfare Best Movie Awards in 1980 and 1982 respectively. तो यहाँ पर Kalyug movie का भी एक गाना सुन लेते हैं और एक ट्रिब्यूट हम अपनी तरफ से शाम निगल जी को देते हैं.
बिल्कुल. अब हम याद कर रहे हैं पंडित चंद्रनाथ शास्त्री जी को, जो भारत के सबसे प्रशंसित और वरिष्ठ तबला वादकों में से एक हैं. इन्होंने बनारस घराना में प्रशिक्षण प्राप्त किया. इनका पारिवारिक संबंध रहा महान भारतीय कवि, गीतकार, लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से. इन्होंने अपने जीवन काल में कई नाट्य प्रस्तुतियां और कुछ फिल्म निर्माण कार्य भी किए. तो आइए सुनाते हैं इनकी एक तबला प्रस्तुति. आज राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती है. ये भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार थे. एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी रहे. इन्होंने युवक जैसी समाचार पत्रों का संपादन किया. इसके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में भी ये संलग्न रहे.
And today is the birth anniversary of another Indian film producer, Surinder Kapoor. He produced Bollywood films and also served as president of the Film and Television Producers Guild of India from 1995 to 2001. Surinder Kapoor ki shuru ki kuch filme flop rahi, Sarfirozi jaise Phool Khile Hain, Gulshan Gulshan, but he made good money with his productions later on, which were remakes of Kannada, Tamil and Telugu films like Hum Paanch, Wo Saat Din, Loaf फर, जुदाई, सिर्फ तुम, हमारा दिल आपके पास है, पुकार, नो एंट्री, ऑल ऑफ देम स्टारिंग हिज सन अनिल कपूर. तो यहां पर हम पुकार मूवी का प्यारा सा लता मंगेशकर की आवाज का गाना पहले सुन लेते हैं. Today is the birthday of Eddie Jerome Vedder, who is an American singer, musician and songwriter. He is the lead vocalist, primary lyricist and one of the three guitarists for the rock band Pearl Jam. He was previously a guest vocalist for Superdog Temple of Dog, a tribute band dedicated to singer Andrew Wood. And Eddie Sarfirozi can steal our hearts with his vocals, and we are listening to Hard Sun by Eddie Vedder over here.
When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I
श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ इजाजत दीजिए सरफिरोजी और रेनू को. कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड.
यस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन डियर लिसनर्स. हैव अ सुपर्ब डे.
नमस्कार.